लर्नर्स, आज हम ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग एरर्स के ऊपर बात करेंगे। हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस आखिर क्या है और ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। जब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, जर्नलाइजिंग करने के बाद जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तो लेजर में पोस्ट करने के बाद हमें हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस मिल जाता है, तो उस बैलेंस को यूज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर साल के अंत में ये जरूरी हो जाता है कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको हम मेंटेन कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको बनाने से पहले, तो ये जरूरी है हमारे लिए कि जो उनकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी है अकाउंट्स की उसको भी हम चेक करें। तो इस पर्पस के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कि हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो आज की इस चर्चा में आप जो है ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे और जो एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स की हम बात करते हैं उसके लिए किस हद तक हम ट्रायल बैलेंस पे डिपेंड हो सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और आप जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है और कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के टाइम पर, और क्या मेथड हो सकते हैं जिनसे हम जिन एरर्स की बात कर रहे हैं उनको हम लोकेट कर पाएं। तो इस चैप्टर को करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस को डिफाइन कर पाएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे, जो कॉजेज हैं, जो ट्रायल बैलेंस के डिसएग्रीमेंट के जो कॉजेज हैं उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो टाइप्स ऑफ एरर्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, और कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस हाइड कर जाता है, वो हमें डिस्क्लोज नहीं होती हैं अगर ट्रायल बैलेंस एग्री भी कर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और क्या प्रोसीजर होता है इन एरर्स को लोकेट करने का, क्या लिमिटेशंस है ट्रायल बैलेंस की और कैसे हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एक बिजनेस यूनिट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एक दिन में भी कई बार बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम इन ट्रांजैक्शंस को जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसको कि हम जर्नल प्रॉपर कहते हैं उसमें हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। उसमें रिकॉर्ड करने के बाद हम इनकी पोस्टिंग करते हैं लेजर अकाउंट्स में, जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं उन सबको हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। पीरियोडिकली जो हमारे लेजर अकाउंट्स हैं इनको हम बैलेंस करते हैं जिससे कि हम ये पता लगा पाएं कि इनका जो हम ट्रांजैक्शंस इसमें पोस्ट कर रहे हैं उसका नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज भी हो सकते हैं और फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, तो इसके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जरूरी है, और जो क्वालिटी और जो रिलायबिलिटी है हमारे रिजल्ट्स की वो डिपेंड करती है कि हम कौन सी एंट्रीज करते हैं वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट में और किस तरह से हम उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इन एंट्रीज की जो एक्यूरेसी है या जिसमें हम जो लेजर पोस्टिंग करते हैं इससे पहले कि हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़े, उससे पहले हम इस काम को करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कि हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, जिसमें कि जो उससे पहले हमने सारे लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसके बैलेंसेस जो हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें हम हर एक अकाउंट का नाम लिखते हैं और उसका उसके आगे दो अमाउंट के कॉलम रहते हैं, एक डेबिट, पहले डेबिट बैलेंस का कॉलम होता है और उसके बाद क्रेडिट बैलेंस का कॉलम होता है। तो अगर तो उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसका अमाउंट जो है हम डेबिट कॉलम में लिखते हैं, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसका अमाउंट हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। तो और जब हम ट्रायल बैलेंस जब बना लेते हैं पूरा, तो उसको बनाने के बाद हम दोनों ही जो उसके डेबिट कॉलम और जो क्रेडिट कॉलम है उनका टोटल करते हैं, और अगर हमारा सब कुछ सही है, सारी कैलकुलेशन सही है, तो जो ट्रायल बैलेंस है उनका टोटल जो है वो टैली करना चाहिए। अगर टोटल टैली करता है तो एक ये एक प्रिलिमिनरी प्रूफ है, हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स का, कि हाँ हमारे अकाउंट्स एक्यूरेट हैं। ये एश्योर करता है कि जो हमने जर्नल एंट्रीज करी थी वो सही हैं और उनको हमने लेजर में करेक्टली पोस्ट किया था, और जो डेबिट्स और क्रेडिट्स हैं उनके बीच में हमने हर जगह इक्वालिटी मेंटेन करी है। क्योंकि हम कहते हैं कि फॉर एवरी डेबिट देर इज अ कोरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट कॉलम का इक्वल होना जरूरी है। हालांकि अगर जो दोनों कॉलम हैं वो टैली नहीं करते हैं, तो इससे हमें ये पता लगता है कि कुछ एरर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। जो ट्रायल बैलेंस है उसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें सेपरेट कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, बैलेंसेस होते हैं रैदर हम कह सकते हैं डेबिट और क्रेडिट के, और जो भी लेजर अकाउंट्स बनाए गए हैं उस पर्टिकुलर डेट पे। तो ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है ये इंडिकेट करता है तो कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमने बनाई हैं, जो हमने प्रिपेयर की हैं, वो डबल एंट्री जो के जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डेंस में हैं, और एक हद तक ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है अकाउंटिंग एंट्रीज की इनको मेंटेन करती हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है एक चेक है हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पे, जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारी डिफरेंट बुक्स हैं जैसे कि जर्नल है, लेजर है। तो अकाउंटेंसी में जरूरी नहीं है कि आपको कोई टीचर बताएगा या कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, लेकिन हालांकि अगर आप खुद से भी कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसको सेल्फ चेक प्रोसेस है एक तरह से, तो आप जो ट्रायल बैलेंस बताएंगे तो आपको कई हद तक क्लियर हो जाएगा कि आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जो बनाए हैं, वो सही हैं या फिर नहीं सही हैं। सो लर्नर्स, इसके बाद में ट्रायल बैलेंस क्या है इसके बारे में जानने के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये है कि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है अकाउंट्स की वो चेक करना चाहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें क्या अरिथमेटिकल एरर्स हैं जो अकाउंटेंट ने की हैं या फिर उसके असिस्टेंट ने की हैं, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन होगी तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जो उसका डेबिट कॉलम है और जो क्रेडिट कॉलम है वो मैच नहीं कर रहा है। जब ये कॉलम्स मैच नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट इन एग्रीमेंट, और अगर मैच करता है तो हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस एग्री करता है या वो एग्रीमेंट में है। तो इस सिचुएशन में जब ट्रायल बैलेंस नहीं एग्री करता है तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कुछ एरर तो हुई है, कुछ एरर अकाउंटेंट से जिसने भी एंट्री करी है उनसे कुछ एरर्स जो है हुई हैं, और इन एरर्स को फिर आइडेंटिफाई करने के बाद इनको रेक्टिफाई किया जाता है। फिर जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का वो ये है कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं एंटरप्राइज के। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए एक बेसिस की तरह सर्व करता है। अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर करते तो हम फाइनल अकाउंट्स बनाने लगते हैं, और पॉसिबल हो सकता है कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उनको हम रिकॉर्ड करना भूल जाएं, जिसको कि हमने फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे अवेलेबल ना हो। तो इसलिए अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन ओमिट कर दी है फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम, तो हम उसको ट्रायल बैलेंस से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं जो नहीं रिकॉर्ड हुए फाइनल अकाउंट्स में उसको हम उसमें ओमिट कर सकते हैं या फिर भूल सकते हैं। उसके बाद में जो और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के वो है कंपैरेटिव स्टडी होती है हर एक अकाउंट की। ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है कि हमें प्रेजेंट बैलेंस पता चलता है हर एक अकाउंट का उसके प्रीवियस पीरियड बैलेंस के साथ में। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस जो है अकाउंट का वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा दो अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में। तो इसको ट्रायल बैलेंस को एक टूल की तरह भी डिसाइड किया जाता टूल की तरह भी यूज किया जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको हमें कम करने की जरूरत है, क्या हम अपना इम्प्रूव्ड प्रॉफिट पोजीशन दिखाना चाहते हैं, तो इनसे सब चीजों के लिए भी इसे यूज किया जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियल बजट बनाने के लिए जो प्रीवियस ईयर्स में ट्रायल बैलेंस के फिगर्स हैं वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं ये एस्टिमेट करने के लिए कि फ्यूचर अमाउंट जो है वो क्या रहेगा। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम जो है डिफरेंट फाइनेंशियल बजट्स बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से। उसके बाद लर्नर्स हमने बात करी थी एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस की एंड डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस की। तो जब हम कहते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है, मतलब कि जो उसके डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं या फिर डेबिट और क्रेडिट टोटल्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं, तो क्या कॉजेज हो सकते हैं जिससे कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो डिसएग्री करता है। तो फर्स्ट जो कॉज हो सकती है वो है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग इन वन अकाउंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेबिट और जो क्रेडिट एस्पेक्ट्स हैं ट्रांजैक्शंस के, उनको हम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। तो अगर हम उसको डेबिट एक अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट करते हैं तो हम हो सकता है कि हम जो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में है दूसरे कंसर्न्ड अकाउंट की वो हम भूल जाएं, तो इससे जाहिर सी बात है कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो अगर हमें 200 रुपये अली से रिसीव हुए हैं, इसको हमने करेक्टली हमने कैश बुक के डेबिट साइड पे तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इसको हमको अली के क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करना था जो कि हम भूल गए। अब इस एरर की वजह से होता क्या है, जो टोटल है डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस वो तो ज्यादा रहेगा लेकिन जो टोटल क्रेडिट कॉलम का है वो कम हो जाएगा, इसलिए जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो यहाँ पर एग्री नहीं करेगा। तो ये है कि हमने एक एंट्री जो है डेबिट या क्रेडिट में से कोई भी एक एंट्री हमने ऑमिट कर दी या हम उसे करना भूल गए। नेक्स्ट जो हमारा कॉज हो सकता है वो ये हो सकता है कि डबल पोस्टिंग इन वन अकाउंट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बाय मिस्टेक ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई एक एंट्री जो है वो 2 बार डेबिट कर दी या फिर आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो इससे 2 बार क्रेडिट कर दिया तो उससे होता क्या है कि एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट करने की बजाय अगर आप उसको 2 बार क्रेडिट कर देंगे तो क्रेडिट में तो वो ट्वाइस द अमाउंट दिखाएगा और उससे भी ज्यादा जो है वो डेबिट में कम हो जाएगा। तो इससे भी हम देखेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो अग्री नहीं करता है। दूसरा है कि जब हम रॉन्ग साइट पे पोस्टिंग कर देते हैं, किसी अकाउंट के हमने रॉन्ग साइट पे पोस्टिंग कर दी, तो जब हम किसी एंट्री की पोस्टिंग रॉन्ग साइट पे कर देते हैं तो उससे होता क्या है कि जो हमारी डेबिट साइट है उसमें पोस्ट करने की बजाय हमने क्या किया, हमने जो एंट्री करनी थी उसको हमने क्रेडिट साइट पे पोस्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो डिफरेंस होगा हमारा वो डबल अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा, तो इससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो अग्री नहीं करेगा। फिर जो और कॉजेस हो सकते हैं वो हो सकता है कि हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया एक अकाउंट में, हो सकता है कहीं 200 रुपये का अमाउंट हमें लिखना था और हमने जो है 100 रुपये ही वहां पे लिखा, तो इससे भी जो है हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस दिखाएगा 100 रुपये से, 100 रुपये से मे बी वो ओवरकास्ट हो जाए। तो इस तरह से ही जैसे रॉन्ग कास्टिंग जो है वो सब्सिडरी बुक्स में भी हो सकती है कि सब्सिडरी बुक्स या तो ओवरकास्ट है या हमने उसमें ज्यादा अमाउंट दिखा दिया या फिर वो अंडरकास्ट है हमने उसमें कम अकाउंट दिखा दिया, तो हो सकता है जो टोटल सेल्स जर्नल का हो वो ज्यादा हो लेकिन वो हमने उसमें टोटल जो है उसका कम दिखा दिया हो, तो इससे भी जो अमाउंट है वो उसमें शॉर्ट दिखाएगा ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करेगा। उसके बाद कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कोई एंट्री जो है वो हमें हमने ओमिट कर दी पोस्ट करने के लिए, तो जब हम कोई एंट्री ओमिट कर देते हैं तो उससे भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा रॉन्ग टोटलिंग या बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट से भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है। जब भी कोई अकाउंट की हमको हम रॉन्गली टोटल कर देते हैं या रॉन्गली उसको हम बैलेंस कर देते हैं तो इससे भी हमारे अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो सपोज हम करते कि जो डेबिट साइड का टोटल है श्याम के अकाउंट का वो 1300 रुपीज है, को 1300 रुपीज हमने लिख दिया है, 1100 रुपए की मतलब 1100 की जगह हमने उसको 1300 लिख दिया है, तो इससे जो है जो हमारा श्याम अकाउंट का जो बैलेंस है वो गलत हो जाएगा और कॉन्सिक्वेंटली जो डेबिट टोटल है ट्रायल बैलेंस का वो 200 रुपए से ज्यादा दिखेगा वहां पर। सिमिलरली अगर टोटलिंग जो है वो करेक्टली की है लेकिन मिस्टेक जो है वो हमें अकाउंट के बैलेंसिंग में कर दी है तो उससे भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम एक अकाउंट जो है उसको ओमिट कर दें ट्रायल बैलेंस से। तो अगर हम कोई अगर हम कुछ भूल जाते हैं कोई बैलेंस लिखना ट्रायल बैलेंस के अकाउंट में तो उससे भी ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करेगा। सिर्फ हम वही अकाउंट ओमिट कर सकते हैं जो पूरा बैलेंस हो गया हो और उसका कोई भी अमाउंट जो है वो कैरेट डाउन या ब्रॉट डाउन ना हो। उसके अलावा जब कोई भी बैलेंस जो है उसको हम लिखते हैं रॉन्ग कॉलम में ट्रायल बैलेंस के तो उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो अग्री नहीं करेगा। तो सपोज अगर कोई डेबिट का बैलेंस है और उसको हम डेबिट बैलेंस में ना लिख के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट जो कॉलम है उसमें लिख देंगे तो उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा और ट्रायल बैलेंस इससे भी हमारे डबल अमाउंट का डिफरेंस दिखाएगा। उसके अलावा कई बार हमारी जो टोटलिंग हम करेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम की वो भी गलत हो सकती है और इससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं करेगा। सो लर्नर्स, आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ एरर्स के बारे में बात करी जिससे जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो हम नोट करते हैं कि ये जो एरर्स हैं ये इसका सिंगल एस्पेक्ट भी हो सकता है और ये डेबिट या क्रेडिट साइड को इफेक्ट कर सकती हैं। लर्नर्स, हम बात कर रहे हैं उन एरर्स की जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है जिससे हमें पता चलता है, क्योंकि हमारा बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस का वो जो है टैली नहीं करता है तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट में नहीं है। इससे हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलती हुई है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो एग्री कर रहा है लेकिन तब भी कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो इस तरह की जो एरर्स हैं जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस तो एग्री करता है, वो दिखता है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलती रह जाती है, तो इस तरह की जो एरर्स हैं उनको हम कहते हैं एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो जो एग्रीमेंट है ट्रायल बैलेंस का वो एक प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी का, प्रिलिमिनरी हम कह सकते हैं कि हाँ एक मोटे तौर पे हमें पता लग जाता है कि हमारे अकाउंटेंसी जो हमारा हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है वो सही किया है कि नहीं सही किया है, लेकिन हम उसको 100% श्योर नहीं मान सकते कि अगर इसमें गलती नहीं है तो हमारे सब अकाउंट सही हैं। तो कई बार कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो हमसे हो गए हैं लेकिन जिससे ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे हम इन एरर्स की बात कर रहे हैं जिसको कि हम कहते हैं एरर्स Not disclosed by trial balance, जैसे कि error of complete omission। तो कोई ऐसा भी transaction हो सकता है जो हमने completely omit कर दिया हो record करने से books of account में, तो ऐसा जो omission है वो trial balance के agreement को effect नहीं करेगा। Example के लिए अगर हमने कोई credit purchase करी है 6000 रुपए की रवि से और वो omit हो गया है record होने के लिए परचेज बुक से, तो क्योंकि ये जो ओमिशन है ये टोटली ना हमने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है और ना ही हमने इसको रवि के अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, तो ये कंप्लीट ओमिशन का केस है, इसलिए ये हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा और इससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो अग्री हो जाएगा। इसके अलावा कुछ होती है एरर्स ऑफ कमीशन। इस तरह की जो एरर्स हैं वो होती हैं नेग्लिजेंस की वजह से, जो भी अकाउंटेंट्स अकाउंट्स बना रहे हैं उनकी लापरवाही के कारण इस तरह की एरर्स हो सकती हैं जिनको कि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त लोकेट किया नहीं जा पाता है। जैसे कि अगर 10,000 रुपए की सेल हुई और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 रुपए के हिसाब से नोट कर लिया गया। तो क्योंकि बैलेंस जो है वो दोनों ही अकाउंट में 100 रुपए के हिसाब से नोट किया गया है, इसलिए जो ट्रायल बैलेंस है वो इसमें इस केस में भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा लर्नर्स कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट है, उसने जो है 500 रुपये कम पोस्ट किए हैं डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट में, और साथ साथ उसने सेल्स अकाउंट के भी जो क्रेडिट साइड है उसमें भी 500 रुपये जो है वो कम पोस्ट किए हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो दो एरर्स हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट कर लिया है, क्योंकि दोनों ही साइड हम देखें कि गलती जो है वो डेबिट साइड में भी हो गई 500 रुपए से, और गलती क्रेडिट साइड में भी हो गई 500 रुपए से। तो इस तरह की जो एरर्स हैं इनको हम कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं, और इससे भी जो हम ये जो है हमारा जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं उसको में ये इफेक्ट नहीं करती हैं। उसके अलावा लर्नर्स कुछ एरर्स होती हैं जैसे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो जब हम जब कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो वायलेट होता है, जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम पर, तो इस तरह की एरर्स को हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात लें, जो परचेज ऑफ एसेट है अगर हम उसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लें तो वो एक एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी, क्योंकि परचेज अकाउंट उससे डेबिट हो जाएगा और जो सप्लायर अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से, और ये एरर जो है ये ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इसी के साथ लर्नर्स हम देखते हैं अगर और हमारे पास हैं, जैसे कि कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, जैसे कि हमने रॉन्ग कास्टिंग की बात करी कि अगर कोई टोटल है कैश बुक का या फिर किसी और सब्सिडरी बुक का, अगर उसको हमने रॉन्ग कास्ट किया है तो ट्रायल बैलेंस हमारा जो है वो अग्री नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल जो परचेज बुक का है वो हमने 2,000 रुपये ज्यादा लिखा है, तो ये टोटल जो है ये डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट में हम इसको पोस्ट करेंगे, और ये एक्सेस डेबिट जो है 2,000 रुपये का दिखाएगा, इसलिए जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो अग्री नहीं करेगा। उसी के साथ साथ अगर हमने रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट में पोस्टिंग कर दी या रॉन्ग अमाउंट की पोस्टिंग कर दी, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग हमने कर दिया कि हमने एक ही एस्पेक्ट जो है ट्रांजैक्शन का उसको हमने पोस्ट नहीं किया, या हमने किसी एक अमाउंट को एक ही अकाउंट में 2 बार पोस्ट कर दिया, मतलब उसको हमें एक बार डेबिट करना चाहिए था, एक बार क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको दोनों बार डेबिट ही कर दिया, तो इस तरह का जो अमाउंट होगा ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज होगा। उसके बाद एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन लेजर, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम लेजर के टोटलिंग करते हैं अगर हमने उसमें कुछ गलती कर दी, या उसका बैलेंस निकालने में हमने अगर कोई गलती कर दी, तो इससे भी हमारे ट्रायल बैलेंस में ये जो इसका इफेक्ट होगा ये उसमें ऑब्वियस होगा और ये उसमें हम देख सकते हैं। उसके अलावा लर्नर्स, आपने देखा कि हमने एरर्स की बात करी, जो ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स होती हैं और जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है हमारा एग्री नहीं करता है, तो हमने जाना कि क्या कॉजेस हो सकते हैं डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस के। उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, और कौन कौन सी एरर्स ऐसी होती हैं जिसे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। इसके बाद में लर्नर्स हम ये भी जानने की और जानेंगे कि जो प्रोसेस है एरर्स को लोकेट करने का वो क्या होगा। तो अगर कोई एरर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, तो उससे जो हमारी एक्यूरेसी है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस की जो एक्यूरेसी है, जो उसके रिजल्ट्स की, वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से में रिवील होती है। तो इसलिए जरूरी है कि जो एरर्स हमने करी हैं उसे लोकेट किया जाए ताकि हम उसे सही कर पाएं। तो ये जो टास्क है एरर्स को लोकेट करने का, हालांकि ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसको करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है उसे हम चेक करते हैं। उसके बाद जो लेजर के बैलेंसेस हैं और जिसको हम ट्रायल बैलेंस में लेके आए हैं उससे हम इसे कंपेयर करते हैं। थर्ड, हम वेरीफाई करते हैं कि जो टोटल है सब्सिडरी बुक्स का और जो उसकी हमने पोस्टिंग की है लेजर अकाउंट्स में, उससे हम इसको वेरीफाई करते हैं। फिर हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने जर्नल एंट्रीज करी हैं उसको हमने करेक्टली पोस्ट किया है कि नहीं डिफरेंट अकाउंट्स में। अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ अनबैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जिसके डेबिट्स और क्रेडिट्स जो है वो मेल नहीं खाते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ एरर्स हुई हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जिससे हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो ऐसी एरर्स को हमें ढूंढ के और उसको हमें रेक्टिफाई भी करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इस एरर को इस तरह की एरर्स को ढूंढने के लिए होगा कि सिंपली हम जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स हैं उनको हम टोटल करें और टोटल करके हम उसका बैलेंस निकाल लें। तो जब हम बैलेंस निकाल लेते हैं तो हमें एक फिगर मिल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितने अमाउंट की हमने गलती करी है, और फिर हम उसी अमाउंट के लिए देखते हैं या उसी अमाउंट को ढूंढते हैं कि इस अमाउंट की हमने गलती करी कहाँ पे करी है। उसके अलावा कुछ दूसरी स्टैंडर्ड टेक्निक्स भी हो सकती हैं जिससे हम ट्रायल बैलेंस में एरर को ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो हम देख सकते हैं कि अगर वो इक्वली डिवाइड हो रही हैं, डिफरेंस उनमें डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस तरह से हम उसको ढूंढ सकते हैं कि क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर उसका इक्वल हो रहा है, आधा अगर उसका हो रहा है और वो जो अमाउंट है वो डेसिमल्स में नहीं आ रहा है, तो हमें ये पता चल सकता है कि हमने कोई डबल पोस्टिंग तो नहीं कर दी है। तो अगर वो डबल पोस्टिंग है तो उसका हाफ अमाउंट जो है वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेसेस हैं करेक्ट स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जिस पे हम डिस्कशन करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की अगर हम परफॉर्मा की बात करें तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, तो हम उसके ऊपर हेडिंग डालते हैं। हेडिंग हम डालते हैं या टाइटल लिखते हैं कि ट्रायल बैलेंस ऑफ, और वहां पे हम फर्म का नाम लिखते हैं जिसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और एज ऑन और फिर डेट लिखते हैं जो डेट हमारी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो जब हम उसका परफॉर्मा बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, उससे पहले डेट का कॉलम होता है, डेट पर्टिकुलर्स, और जो है उसके बाद दो कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट बैलेंसेस का और एक क्रेडिट बैलेंसेस का जिसमें कि हम बैलेंस लिखते हैं। इसके बाद हम अपना एक एक करके लेजर अकाउंट देखते हैं, जो भी लेजर अकाउंट में हमने लेजर बनाए हैं उनकी जो बैलेंसेस हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में, अगर उनका डेबिट बैलेंस है तो हम अकाउंट का नाम तो हर बार पर्टिकुलर्स में ही लिखेंगे, लेकिन अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको हम डेबिट बैलेंस में उस अमाउंट को दिखाएंगे, लेकिन अगर उनका अमाउंट लेजर में अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में भी हम उसको क्रेडिट बैलेंस में ही दिखाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं और उसको आप किस तरह से जो है वो एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद लर्नर्स हमें ये भी जानना जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो जैसा कि हमने बात करी कि कुछ ऐसी एरर्स भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस जिनको डिस्क्लोज नहीं करता है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो ट्रायल बैलेंस है इसका जो एग्रीमेंट है ये एक प्रूफ नहीं हो जाता है कि 100% जो आपके अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं। इसके लिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस तो एग्री करता है लेकिन तब भी कुछ ऐसी गलतियां उसमें होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो ये ट्रायल बैलेंस की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस जो है बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है हर एक अकाउंट के बारे में। ये हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि बिजनेस ने में क्या प्रॉफिट एंड लॉस की क्या पोजिशन है उस अकाउंटिंग पीरियड में। और ट्रायल बैलेंस जो है अगर एक्यूरेटली नहीं बनाया गया तो जो फाइनल अकाउंट्स उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनेंगे वो भी ठीक नहीं होंगे। तो ट्रायल बैलेंस जो है ये इंश्योर भी नहीं करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं वो एक्चुअली सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये सिर्फ वही बिजनेस एंटरप्राइजेस बनाते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करते हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं ट्रायल बैलेंस की जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको लिमिटेशंस पता होंगी तभी आप में अगर जो लूप होल्स रह गए हैं आपके ट्रायल बैलेंस के बनाने में, अगर चाहे वो टैली कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, तो आप इजीली उन एरर्स को ढूंढ पाएंगे और उन्हें रेक्टिफाई कर पाएंगे। इसके बाद लर्नर्स, सस्पेंस अकाउंट जो है ये क्या है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस जो है एग्री नहीं करता है, उसके रीजंस हो सकते हैं कि कुछ अकाउंटेंट ने, हो सकता है कुछ एरर्स उसमें ऐसी कर दी अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान कि वो नहीं एग्री कर रहा है, और वो डिसाइड करता है अकाउंटेंट कि वो फाइनल अकाउंट्स बनाएगा और फिर ये जो डिफरेंस है इसे शॉर्टर कॉलम जो भी होगा उसमें लिख दिया जाएगा। तो इस ये जो डिफरेंस जो अमाउंट होता है इसको हम एज सस्पेंस अकाउंट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में जब हम ये एरर्स जो हैं जब हम इनको रेक्टिफाई कर लेते हैं थ्रू सस्पेंस अकाउंट, तो फिर हम इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद आर्टिफिशियली अकाउंट को बैलेंस जो हमने किया था फिर हम इसको फाइनली बैलेंस करके रेक्टिफाई कर लेते हैं। सो लर्नर्स, आज हमने लेसन ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग एरर्स में ट्रायल बैलेंस के बारे में जाना, ट्रायल बैलेंस का क्या परफॉर्मा होता है, उसमें किस तरह से हम एंट्रीज करते हैं और उसको बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और कौन सी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है और कौन सी एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। सो लर्नर्स, आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल। थैंक यू सो मच।